मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 1 मई 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाले 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान दोस्तों के नाम हैं अमरजीत यादव, आप गोपालगंज बिहार से हैं, जगदीश चौधरी, आप पकारदीहा गांव से हैं, जिला है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से, और अंशुमन पांडा, आपका जो गांव है वो है बहरामपुर, जिला है गंजाम उड़ीसा, मीना कुमार, आप भद्रा राजस्थान से हैं, प्रमोद कुमार, आप भी भद्रा राजस्थान से हैं, और सौरभ वरुआ, आप गुवाहाटी असम से हैं। तो अमरजीत, जगदीश, अंशुमन, मीना, प्रमोद और सौरभ, आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बीच में एक काफी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई और आप सब उससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, और वो घटना थी कि सिविल सर्विस परीक्षा का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया गया, और पिछले 2-3 दिनों से उन पर काफी कुछ समाचार सूचनाएं लगातार चैनल्स पर भी देखने को मिल रहे हैं, अखबारों में भी पढ़ने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ यूट्यूब्स पर भी अवेलेबल हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट सफल हुए हैं उन्हें अपने सभी आप सब प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उनकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ ही साथ उनका अभिनंदन भी करता हूं। और साथ ही ऐसे स्टूडेंट जो चाहते थे, जो कुछ चाहते थे वहां तक वो नहीं पहुंच पाए हैं, इनमें से बहुत से स्टूडेंट फिर से एग्जामिनेशन में बैठेंगे, उन सबके लिए शुभकामनाएं भी। और साथ ही ऐसे बहुत बड़ी संख्या होगी मित्रों जो इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन सिलेक्शन लिस्ट में उन्हें अपना नाम पढ़ने का अवसर नहीं मिला। मित्रों, ये खेल ही कुछ ऐसा है। कोई बात नहीं, आप अब जब सफल लोगों को सुन रहे हैं तो आपको ये भी सुनने को मिल रहा होगा कि इन्होंने भी असफलताओं का मुंह देखा था और आज ये टॉप पर हैं। तो आप भी अपने लिए कुछ उसी तरह का विचार ले आइए कि कोई बात नहीं, हम आज असफल हुए हैं, हो सकता है कि हमारी यह आज की असफलता भविष्य के किसी बहुत बेहतर सफलता की भूमिका हो, इसलिए निराश होने की कतई कोई जरूरत नहीं होती मित्रों। और जो चीज जितनी बड़ी होगी मान करके चलिए, उसके लिए संघर्ष भी उतना ही बड़ा होता है, और उसमें असफल होने की आशंकाएं कह लीजिए या संभावना कह लीजिए उतनी ही ज्यादा होती है, इसीलिए तो वो चीज बड़ी भी होती है। निराश होने का कोई कारण नहीं, आप उसके यथार्थ को समझिए, और यथार्थ को समझने के बाद अपने को ठीक तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, अपनी एनालिसिस कीजिए, अपनी कमजोरियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, और इसके बाद उन्हें सुधार लीजिए। अगली बार आप भी लोगों की चर्चा के केंद्र में होंगे, और ईश्वर से हम सब यही प्रार्थना भी करते हैं। दोस्तों, मैंने सोचा था कि जो सफल स्टूडेंट हैं उनके बारे में ढेर सारी चीजें जो जानने समझने और पढ़ने को मिल रही हैं उनको आधार बनाकर मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के बारे में कुछ बातें मुख्य विषय के तहत ही करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी थोड़ा सा और रुकना चाहिए, अभी ढेर सारी जानकारियां और आनी बाकी हैं। मैंने ये भी देखा कि कुछ जानकारियां कुछ कंट्रडिक्शंस किस्म की हो रही हैं, मतलब एक चैनल पर कुछ सुनने को मिल रहा है, दूसरे पर कुछ सुनने को मिल रहा है, तो कंट्रडिक्शंस भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब स्थितियां बहुत क्लियर नहीं है। और देखिए, जो मीडिया होता है चूंकि वो जल्दी से जल्दी खबर हम सब तक पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इसमें कुछ चीजें मिस भी हो जाती हैं। तो मैंने फिर यह निर्णय लिया है कि मैं इस पर बात करूंगा, डेफिनेटली इस पर बात करूंगा, इस रूप में बात करूंगा कि ये जितने भी चीजें आप सुन रहे हैं समझ रहे हैं इनके आधार पर आप अपने लिए कैसे प्लान बनाएंगे, यानी कि उनकी सच्चाई क्या है, इन सबको सुनने के बाद हम उसमें से एक कॉमन ट्रूथ, कॉमन प्लान जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद जब चीजें स्थिर हो जाएंगी या ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारे पास आ जाएंगी। इसलिए मित्रों, इस आश्वासन के साथ मैं अभी मुख्य जो अभी फाइनल जो रिजल्ट आए हैं उनकी चर्चा मुख्य विषय के तहत नहीं कर रहा हूं। हाँ, आज मुख्य विषय के तहत मैं बौद्ध दर्शन पर जरूर कुछ बातें आपसे करूंगा, तो ये हमारा आज का मुख्य विषय होगा। लेकिन सबसे पहले आइए हम कुछ न्यूज देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम टीवी न्यूज और रेडियो न्यूज की बात करें तो उसमें ज्यादा कुछ जानने और समझने के लिए नहीं है। कल बुद्ध पूर्णिमा थी, बुद्ध पूर्णिमा को लेकर के न्यूज में बात थी, तो उसके बारे में तो हम मुख्य विषय के तहत चर्चा करेंगे ही करेंगे। हाँ, अखबारों में जरूर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और उधर मैं आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा, और ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पहला, आपने देखा कि इस बीच में पिछले एक सप्ताह से, खासकर 4-5 दिन से, ये खबर आनी शुरू हो गई थी कि खासकर लाल किले को लेकर के, कि लाल किले को सरकार ने एक इंडस्ट्रियल ग्रुप है, उन इंडस्ट्रियल ग्रुप को, डालमिया भारती समूह को गोद दे दिया है। गोद दे दिया है का मतलब वो उसकी रख रखाव करेंगे, और इसके बाद और भी दूसरे जो हमारे हेरिटेज हैं, जो हमारी धरोहर हैं, उन धरोहरों को प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंपने की बात कही जा रही है। तो इसको लेकर के एक विवाद की स्थिति आ गई है और कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया है, और ये कहकर विरोध किया है कि इसका मतलब यह है कि सरकार के पास पैसा नहीं है या उसकी क्षमता नहीं है कि वो हमारी धरोहरों की भी रक्षा कर सके। तो इस तरह की खबरें और एनालिसिस एडिटोरियल कमेंट्स में भी आपको पढ़ने को मिलेंगी। और मुझे लगता है कि जो सिविल सर्विस का आपका आर्ट लिटरेचर कल्चर का जो हिस्सा होता है उसके तहत ये एक महत्वपूर्ण घटना है, तो इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आप ध्यान रखिएगा मित्रों। और आपको एक क्लू में केवल बताना चाहूंगा कि सरकार कुछ समय पहले एक एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम लेकर के आई थी, यानी कि जो हमारे हेरिटेज है, हमारी जो विरासत है, आप उनको एडॉप्ट कीजिए, गोद लीजिए, उसी के तहत ये गोद दिया गया है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब आप पॉइंट्स जुटाते चले जाइएगा, है ना, इसके पक्ष में कुछ चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, इसके विरोध में कुछ चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, बकायदे आप उन्हें नोट करते जाइए और फिर आप अपना मत उसमें स्थिर कीजिएगा। मैं समझता हूं कि इसके लिए इतना ही हिंट कर देना मित्रों पर्याप्त होगा, क्योंकि हमारे पास दूसरी और भी घटनाएं हैं और फिर मुख्य विषय के लिए बहुत कम समय बच जाएगा, इसलिए मैं इसे यहीं पर छोड़ता हूं। इस बीच में आपने कल अगर डीडी न्यूज देखा हो तो उसमें हमारे जो विद्युत मंत्री हैं उनका काफी लंबा इंटरव्यू भी था, क्योंकि सरकार ने जो गांव तक बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया था वह कल पूरा हो गया। तो पूरे मंतव्यों कह लीजिए कि भारत के पूरे गांव तक बिजली पहुंच गई है। ये एक छोटी सी घटना है, छोटी सी घटना इस सेंस में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से नहीं। थोड़ा सा बस इस पर ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि देश के डेवलपमेंट को दिखाने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है, बताने का बहुत मापदंड है, और फिर विकास का भी आधार है इलेक्ट्रिसिटी, तो उस रूप में कंटेंट के तहत आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अखबारों में आपने पढ़ा होगा, आज मैं आपको कुछ एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं उत्तरी कोरिया की घोषणा को लेकर। इस बीच हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरह से उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के जो हेड ऑफ द स्टेट थे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे, वो आपस में मिले, उनकी बातचीत के बाद जो तनाव था, भयानक जो तनाव का माहौल बना हुआ था, वो कम हुआ, और उत्तरी कोरिया ने अब यह घोषणा किया है कि वो अपने परमाणु परीक्षण बंद कर देगा। एक बहुत बड़ी बात है और इससे पूरी दुनिया ने काफी राहत महसूस की है, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और आपको मालूम है कि कुछ समय के बाद ही उत्तरी कोरिया के हेड और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच बातचीत भी होनी है, तो ये एक विश्व की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मालूम पड़ती है। दोस्तों, इस बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी चीन से वापस आ गए हैं, उस पर भी आपको क्लिपिंग्स और एडिटोरियल आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। देखिए, तो अनौपचारिक बैठक थी, हाँ ये जरूर है कि इस बैठक में दोनों ने बहुत ही सद्भावपूर्ण तरीके से भविष्य को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो ज्यादा कुछ आपके पास तथ्य के रूप में है नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि एक स्टेप है टुवर्ड्स द इंडिया एंड चाइनाज रिलेशन, तो आपके दिमाग में वो दर्ज होनी चाहिए, और इससे रिलेटेड जो भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलता है आपको चाहिए कि उसे नोट कर लें, और जब भी दोनों देशों के संबंधों के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उल्लेख ही सही लेकिन इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, बौद्ध दर्शन। देखिए, मैं जानबूझ करके यहां बौद्ध दर्शन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बौद्ध धर्म का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। शुरू में सब दर्शन ही होते थे, वैदिक भी शुरू में दर्शन ही था, जितने भी जैन दर्शन ही था, सब दर्शन होते हैं, और उन दर्शन के प्रति जब जनता की बहुत गहरी आस्था हो जाती है तो फिर वो उन्हें फॉलो करने लगते हैं और फिर वो धर्म कहलाने लगता है। जो बौद्ध दर्शन है मित्रों, बौद्ध दर्शन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है तार्किकता, वैज्ञानिकता। जब आप पूरे के पूरे भारतीय दर्शन की विकास यात्रा को देखते हैं, इतिहास को देखते हैं, तो आपको जानकर बड़ा सुखद आश्चर्य होगा, आश्चर्य नहीं होना चाहिए, कि जो हमारा वैदिक काल था, वैदिक काल का जो पूर्व वैदिक काल है जिसमें हम ऋग्वेद को लेते हैं, तो ऋग्वेद की जो हमारी फिलॉसफी है वो बहुत ही साइंटिफिक है, वो तो बिल्कुल प्रकृति से जुड़ी हुई फिलॉसफी है, तो बहुत ही वैज्ञानिक है, टू सम एक्सटेंट बहुत ही तार्किक है। इसके बाद हम फिर देखते हैं कि पोस्ट वैदिक पीरियड में यानी उत्तर वैदिक काल में फिर धीरे धीरे जैसे कि दुनिया के दूसरे धर्मों के साथ हुआ है, सभी जगह ऐसा हुआ है कि उन वो जो दर्शन था वो धर्म में बदलने लगा और धर्म के साथ फिर दुनिया भर के कर्मकांड जुड़ने लगे, और इस तरीके से उस धर्म ने जो धर्म दर्शन था उसने जैसे ही धर्म का रूप ग्रहण किया उसकी तार्किकता नष्ट हो गई और वो एक तरह से पाखंड में तब्दील होने लगा। भारत की एक बहुत बड़ी बात है कि सन 500-600 ईस्वी पूर्व राइट, यानी कि आज से लगभग 2500 साल पहले बहुत से वैदिक विरोधी मत आए जिनको एंटी वैदिक फिलॉसफी कहते हैं, एंटी वैदिक फिलॉसफी। और बेसिकली जब हम एंटी वैदिक फिलॉसफी कहते हैं तो अनफॉर्चुनेट पार्ट इसका यह है कि उसमें ऋग्वेद भी शामिल हो जाता है, जबकि ये ऋग्वेद नहीं है, बाद के हैं। अदरवाइज आप देखिए कि आगे चल करके स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौट चलो, जबकि वो एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पर कह रहे हैं वेदों की ओर लौट चलो। तो फिर किस वेदों की ओर लौट चलो? क्या उन्हीं वेदों की ओर जिनके खिलाफ जैन धर्म, बौद्ध धर्म और दूसरे दर्शन आए, क्या वहीं लौटने की बात कर रहे हैं? नहीं, वो ऋग्वेद की ओर लौटने की बात कर रहे हैं, लेकिन किताबों में यही लिखा जाता है कि एंटी वैदिक फिलॉसफी। मित्रों, जो पूरा का पूरा जो उपनिषद है और इसके बाद जो षट दर्शन है, छह दर्शन है, आपको मालूम है उसमें सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, टू सम एक्सटेंट मीमांसा है, ये जितने भी दर्शन है ये बेसिकली यूं कह लीजिए कि तार्किक दर्शन है, वैज्ञानिक दर्शन है। आप इनको पढ़कर देखिए, आप पढ़ने के बाद दंग रह जाएंगे और भारतीय मेधा के प्रति आपके मन में बड़ा आश्चर्यजनक भाव पैदा होगा कि 2500 साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे विचार दार्शनिक थे, वो चीजों को इतने वैज्ञानिक तरीके से सोचते थे, इतने यथार्थवादी तरीके से सोचते थे, वो बहुत ही रियलिस्टिक है, और उसी में से बौद्ध दर्शन भी एक है, बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही तार्किक। इतना अद्भुत दर्शन है मित्रों बौद्ध दर्शन कि मैं जब पढ़ता हूं तो हर बार रोमांचित हो जाता हूं कि उस काल में इस तरीके से सोच पाना, और यही गौतम बुद्ध की महानता भी है, ग्रेटनेस भी है, एक्सक्लूसिवनेस भी है। और उधर महावीर स्वामी भी आप देखिए उन्हीं के आसपास के ही हैं, वो भी लगभग लगभग इसी तरह की बात कर रहे थे। तो इन्होंने बेसिकली किया क्या है कि उस समय का जो समाज था, इनफैक्ट उस समाज को एड्रेस करने की कोशिश की है, उस समाज की जरूरतें क्या थी, उस समाज में जो पतन की स्थिति आ गई थी उसके कारण क्या थे। तो सीधी सी बात है कि कैसे समाज के पतन को रोका जाए और उन्हें करने के लिए क्या बताया जाए। ठीक है, पतन को रोकने के लिए एक तरह का उपाय हुआ, लेकिन आप आगे चलने के लिए भी तो उन्हें कुछ बताएंगे। तो दोनों ही दृष्टियों से गौतम बुद्ध ने अपनी बातें देश के सामने रखी, और इसकी तार्किकता की ही सबसे बड़ी ताकत थी बौद्ध दर्शन की कि आप देखिए कि बाहर भी जो भारत का दर्शन सबसे ज्यादा फैला है वो बौद्ध दर्शन है, सबसे ज्यादा फैलने वाला। नो डाउट कि जो हमारा जो अलग तरीके का जो भक्ति काल का जो समय रहा है या जो पूर्व वैदिक पीरियड के कुछ की जो फिलॉसफी रही है, हमारे पुराणों की कुछ बातें रही हैं, वे भी थाईलैंड जैसे देशों में गई हैं और उन्हें भी स्थान मिला है, लेकिन बौद्ध दर्शन का तो कोई भी मुकाबला नहीं। मित्रों, यहां मैं खासकर जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं सीमित समय में, वो ये कि जो इंडियन फिलॉसफी है, खासकर एंशियंट पीरियड की जो फिलॉसफी है, वो आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्री की दृष्टि से भी, मेंस की दृष्टि से भी, और इसको बहुत ही तार्किक ढंग से आपको समझना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, तार्किक ढंग से इसे समझना चाहिए, ये केवल पढ़ने और रटने की बात नहीं है, उससे बात बनेगी नहीं। दोस्तों, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। आज बहुत सी क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, दीक्षित देवांगन, शीतल थांकी अहमदाबाद से, ऋतुराज हजारीबाग झारखंड से, तनुप्रिया मोहाली पंजाब से, देवेश पटेल, आशीष कुमार कुरील, अजाज अंसारी, अंशुल पटेल और राजीव बत्रा उत्तराखंड से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।